الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر ہم پڑھ رہے ہیں معروف القرآن جلد نمبر 5 سے، اور جو آیات ابھی تلاوت کی گئیں ان کے معروف مسائل پڑھ رہے ہیں. پچھلی چند مجالس سے جمعے کو جو اس کی مجلس ہوتی ہے، یعنی جمعے کو جو ہمارا ہفتہ وار بیان ہوتا ہے، اس میں بھی ہم اسی کو پڑھ رہے ہیں. تو اس میں باتیں ہوئی تھیں کچھ علم سے متعلق ہی، اور ہم تھے پیج نمبر 529 کے اوپر. وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّا، کہ یہ جو آخری پیراگراف ہے 529 پیج کے اوپر، کہ اس میں حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پچھلی آیت میں روح کے سوال پر بقدر جواب دے کر روح کی حقیقت دریافت کرنے کی کوشش سے یہ کہہ کر روک دیا گیا تھا کہ انسان کا علم کتنا ہی زیادہ ہو جائے مگر حقائق الاشیاء کی ہمہ گیری کے اعتبار سے کم ہی رہتا ہے. یعنی اللہ رب العزت نے جو مخلوق بنائی ہے، جس کو کہ شیء بھی کہا جاتا ہے، شیءن اردو میں بھی کہتے ہیں نا شے، کیا شے ہے، تو جتنی مخلوقات ہیں یہ سب جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اشیاء ہیں، تو ان کی حقائق کی جو ہمہ گیری ہے، یعنی مکمل جو یہ کائنات ہے، سب کچھ جو اس کے اندر شامل ہوتا ہے نا، تو یعنی آل انکمپسنگ اس کو کہتے ہیں، ہر چیز کو اس کے اندر شامل کیا جائے، تو اس کے اعتبار سے جو بہت کم ہی رہتا ہے نا. ہم زیادہ سے زیادہ کتنی چیزوں کا علم حاصل کر لیں گے، 10, 20, 1000, 2000, 3000، چند ہزار چیزوں کا علم حاصل ہو جائے گا، وہ بھی بہت ہی سپرفیشل، بہت ہی سطحی درجے کا ہمارا علم ہوتا ہے. ایک دو چیزوں کا ہی تھوڑی سی گہرائی کے اندر ہمیں علم حاصل ہوتا ہے، اس کے لیے بھی بڑا ہمیں وقت لگانا پڑتا ہے، سوچ و بچار کرنی پڑتی ہے. تو بھائی ہمارا علم تو بہرحال کم ہی رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آیت کے اندر کہ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، نہیں دیا گیا تمہیں علم میں سے سوائے بہت تھوڑا، ٹھیک ہے، تو اوور آل بھی، یعنی صرف یہ نہیں کہ روح کے بارے میں تمہیں بہت کم علم دیا گیا، صرف یہ نہیں کہہ رہے کہ روح کے بارے میں تمہیں بہت کم علم دیا گیا، بلکہ تمہیں اوور آل بھی بہت کم علم دیا گیا ہے. تمہیں جو علم دیا گیا ہے یہ بہت کم ہے، بہت تھوڑا ہے. تو تھوڑی چیز کے اوپر اترانا، تھوڑی چیز کے اوپر اترانا، تھوڑی چیز کے اوپر ناز کرنا، تھوڑی چیز کے اوپر فخر کرنا، تو یہ کون سی عقل مندی ہے؟ ٹھیک ہے، چھوٹے بچوں کے پاس چھوٹے چھوٹے سے کھلونے ہوتے ہیں، تو وہ ان کے اوپر جو ہے نا جب اتراتے ہیں، فخر کرتے ہیں، تو بڑے لوگ ان کو دیکھ کر کے ہنستے ہیں، رائٹ، بڑے لوگ ان کو دیکھ کے ہنستے ہیں، نہیں چھوٹا سا بچہ، بچے جو ہے وہ کیسے مزے مزے کی باتیں کرتے ہیں، کیسے عجیب عجیب سی باتیں کرتے ہیں. چھوٹی چھوٹی سی چیز ان کے پاس ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ سمجھ رہے ہیں جیسے کہ ان کو دنیا مل گئی، جیسے کہ ان کو خزانے مل گئے، ٹھیک ہے نا، ایسے ہی ہوتا ہے نا، ہم ایسے ہی کرتے ہیں. تو یہی معاملہ جو ہے وہ ایون بڑے لوگوں کے ساتھ بھی ہے، کہ اگر علم بلا بھی ہے نا تو بھائی وہ ओवरऑल के मुकाबले में तो बहुत कम है। इसलिए गैर जरूरी मबाहिस और तहकीकात में उलझना अपने वक्त को जाया करना है, ठीक है। खाम खा की बहसें मत किया करो, और जो है ना वो जो चीजें तुम्हारे लिए रेलेवेंट नहीं है तो उनकी तहकीकात में उलझा भी मत करो। आयत वला इन शेना में इस तरफ इशारा है कि इंसान को जिस कदर भी इल्म मिला है वो भी उसकी जाती जागीर नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा भी जो मिला है ना वो भी तुम्हारा अपना नहीं है, अल्लाह ताला चाहे तो उसको भी सर्ब कर सकते हैं। जो अपनी चीज होती है वो कोई ले नहीं सकता, अगर कोई ले ले तो वो मुजरिम होता है ना। अपनी जो चीज होती है तो उसको अगर कोई दूसरा आपसे छीन ले तो वो मुजरिम होगा, उसके खिलाफ जो है वो आप दावा करेंगे, उसको कोर्ट में लेकर के आएंगे, उसकी जो है वो क्या कहते हैं उनको, जो जो गवर्नमेंट वाले होते हैं पुलिस वाले होते हैं उनसे शिकायत करेंगे, फिर वो लोग उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे और सजा देंगे क्योंकि उसने आपकी चीज ले ली, राइट। आपकी चीज थी वो उसने ले ली, लेकिन इल्म ये आपकी चीज नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की चीज है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जब चाहे इसको आपसे वापस ले लें, कोई अल्लाह ताला के खिलाफ रिपोर्ट नहीं दर्ज कर सकता, कोई अल्लाह ताला को जो है वो इल्जाम नहीं दे सकता, दावा नहीं कर सकता कि आपने मेरी चीज ले ली, राइट। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। यानी इल्म एक ऐसा खजाना है जिसका जो है ना वो चुराने वाला कोई नहीं है, ये फर्क है इल्म में और दूसरी चीजों में। देखें किताब जो होती है ना वो आपकी जाती किताब है, आपके घर से कोई उठा के ले गया, आप उसके खिलाफ मुकदमा कर सकते हैं, लेकिन इल्म ये कोई थोड़ी कोई आपके घर से उठा करके लेके जा सकता है, ये तो आपके अंदर है ना, ये तो आपके वजूद में है, ये तो आपके जहन में है, आपकी अकल में है ना। कोई आपसे आके चुरा के थोड़ी सकता है, तो क्यों नहीं चुरा सकता, क्योंकि ये इसकी कोई फिजिकल टेंजिबल वैल्यू है ही नहीं, इसकी तो एक नॉन टेंजिबल किस्म की, एक तो इसकी एक जिसको मंतक की जुबान में क्या लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है उसके लिए, जौहर नहीं है ये बल्कि एक लफ्ज होता है, खैर। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की ये खास दी हुई चीज है, इसको अल्लाह रब्बुल इज्जत जब चाहे आपसे वापस ले सकता है, कोई दूसरा आपसे ले ही नहीं सकता, ठीक है। कोई हैवान, कोई चरंद, कोई परिंद आपसे इल्म को नहीं ले सकता, लेकिन अल्लाह ले सकता है, और ये अल्लाह ही की चीज है, आपकी अपनी है ही नहीं। क्या वाला इन शेना में इसी तरह इशारा है कि इंसान को जिस कदर भी इल्म मिला है वो भी उसकी जाती जागीर नहीं, अल्लाह ताला चाहे तो उसको भी सल्ब कर सकते हैं, इसलिए उसको चाहिए कि मौजूदा इल्म पर अल्लाह का शुक्र अदा करे। जो मिला है ना उसके ऊपर शुक्र अदा करो अल्लाह ताला का, ये बराह रास्त अल्लाह की तरफ से मिला है, ठीक है। वास्ते भी जो बने हैं असातिज़ाए कराम, जो वास्ता बने हैं मशायख, जो वास्ता बने हैं, तो वो भी उनका शुक्र भी किस लिए के मन लम यशकुर इन्नास लम यशकुर अल्लाह। नबी अलैहिस्सलाम ने हमें बताया है कि जो इंसान का शुक्र अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं करता। तो वास्तों का शुक्र अदा करने से ये मुराद है कि जिसको के अदब तहजीब कहा जाता है, ठीक है, तो उसकी वजह से हम वास्तों का भी शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन है तो अल्लाह का ना। और फजूल वला यानी तहकीकात में वक्त जाया ना करे, खुसूसन जब मकसूद तहकीक करना भी ना हो बल्कि दूसरे का इम्तिहान लेना और उसको खफीफ करना मकसूद हो, ठीक है। यानी अगर दिल में ये नीयत हो कि दूसरे का इम्तिहान लेना है, उसको कमतर साबित करना है, तो फिर तो ये इंतहाई बुरी चीज है, ठीक है, कि आप जो है वो कोई इल्म की तहकीक इसलिए कर रहे हैं ताकि मैं किसी और को नीचा दिखाऊं, राइट। अनफॉर्चुनेटली कुछ यानी क्या कहते हैं उनको, कुछ ऐसी सिफात भी होती है ना इंसान, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि सांप बिच्छू राइट कीड़े मकोड़ों की सिफात वाले लोग होते हैं, ठीक है, तो वो ऐसी हरकत भी करते हैं कि दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। रिसर्च करी स्कूलों कॉलेजों के अंदर, ये बड़ा आम मुशाहदे में आता है, एक बच्चा एक लड़का एक लड़की जो है ना वो इस वजह से जो है वो पढ़ के आते हैं ताकि किसी के साथ उनको कदूरत हो गई होती है, किसी के दिल में उनके खिलाफ, उनके दिल में किसी के खिलाफ जो है ना वो कीना पैदा हो चुका होता है ना, तो अब जो है ना वो क्लास के अंदर उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं इल्म के जरिए से। ये बहुत ही घटिया सिफत है, यानी इसकी जो मुमासलत बनती है ना वो हैवानात में बिच्छुओं से बनती है इसकी सिफत, सांप कीड़े मकोड़ों से इसकी मुमासलत बनती है इस सिफत की। लेकिन यहां पर तो ये कह रहे हैं कि अगर ऐसी कोई बदनीयती नहीं भी है, बदनीयती नहीं भी है, बस अपने जिसको कहते हैं ना आई डोंट केयर, मैं किसी दूसरे के लिए कोई थोड़ी, मुझे किसी दूसरे की परवाह ही नहीं है, मैं तो अपना मन मौजी हूं, मैं तो बस अपने शौक से कर रहा हूं जो भी कर रहा हूं, मुझे किसी दूसरे को नीचा दिखाने का तो दिल में जज्बा ही नहीं है। कह रहे हैं इसलिए भी नहीं करो तुम, इसलिए भी तुम अब तहकीकात नहीं करो कि जस्ट बिकॉज इट फील्स गुड, जस्ट बिकॉज यू फील गुड अबाउट इट, इसलिए भी तुम तहकीकात ना करो। ठीक है, क्यों क्यों इसलिए तहकीकात ना करो? सिर्फ अपने आप को खुश करने के लिए भी क्यों तहकीकात ना करो? क्योंकि तुम्हें ये दुनिया की जिंदगी बहुत महदूद दी गई है, बहुत ही कम वक्त तुम्हें इस दुनिया के अंदर भेजा गया है, कम वक्त के लिए भेजा गया है। इस वक्त में तुमने आखिरत की नेकी कमानी है, आखिरत के लिए तुमने कमाई करनी है, इसमें तुम किसी ऐसी चीज में भी वक्त जाया नहीं कर सकते जो कि महज तुम्हारी अपनी दिल लगी के लिए हो, महज तुम्हारी अपनी। हाँ, अल्लाह की रजा के लिए करो, आखिरत की जजा के लिए करो, जो भी करो इससे तुम्हें कल्बी इत्मीनान और सुकून भी मिल जाएगा, तुम्हें जाती सुकून, जाती दिल्लगी भी अता हो जाएगी, लेकिन तुम इसको प्राइमरी फोकस बना करके नहीं कर सकते कि मैं तो अपने आप को खुश करने के लिए, जस्ट बिकॉज आई फील गुड अबाउट इट, नहीं, इसलिए नहीं कर सकते। क्यों? अगर तुम करोगे तो तुम जाया कर दोगे अपने इन लम्हात को, तुम जाया कर दोगे। हर लम्हा तुम्हारा आखिरत फोकस्ड होना चाहिए, हर काम तुम्हारा, हर सोच तुम्हारी, हर फिक्र तुम्हारी आखिरत के लिए होनी चाहिए। ठीक है, अल्लाह ताला उसके नतीजे में तुम्हें दुनिया में भी इत्मीनान अता फरमाएंगे, तरोताजगी अता फरमाएंगे, खुशी अता फरमाएंगे, राहत अता फरमाएंगे, लेकिन तुम उनके लिए काम नहीं करो, तुम आखिरत के लिए काम करो। ठीक है, ये क्या है? ये ईमान कहलाता है। ठीक है ना, क्योंकि ये बात हमें किसी ने कही है कि ऐसा करोगे तब तुम्हें ये मिलेगा, हमने देखा नहीं इसको। ठीक है ना, हम जब वो काम करेंगे तब हमें वो चीज मिलेगी, तो ये तो एतमाद की बुनियाद पर हम काम करेंगे ना। कहने वाले की बात पर एतमाद करते हुए हम आखिरत फोकस काम करेंगे, फिर हम एक्सपीरियंस करेंगे कि हमें दुनिया का भी इत्मीनान मिलता है। अगर हमें कहने वाले की बात पर एतमाद ही नहीं, तो फिर हम कहेंगे नहीं, तो तुम अपनी तरफ से जो है ना वो अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो, मैं क्यों करूँ ये वाला काम, मैं तो वो करूंगा जिस पे मुझे इमीडिएटली जो है ना वो फायदा हासिल हो रहा हो, नजर आ रहा हो। ठीक है, तो फिर वो ईमान की नफी हो जाती है। आपने कहने वाले की बात पर एतमाद नहीं किया तो फिर ईमान की नफी हो गई। कहने वाला यहाँ पर है कौन? कोई आम आदमी को थोड़ी है, कुरान है और नबी अलैहिस्सलाम है। ठीक है, तो उनकी बात पे एतमाद नहीं करेंगे तो फिर क्या, किसकी बात पे एतमाद करेंगे? एनीवे, तो फरमाते हैं कि जबकि अगर किसी ने ऐसा किया तो कुछ बईद नहीं कि इस कुछ रवि के नतीजे में जितना इल्म हासिल किया है वो सब सलब हो जाए। इस आयत में खिताब अगरचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को है, मगर असल सुनाना उम्मत को मकसूद है कि जब रसूल का इल्म भी उनके इख्तियार में नहीं है तो दूसरों का क्या कहना। ठीक है, इसी वजह से ना जो इल्म है उसकी जो फायदा, जो इल्म है, ठीक है, इल्म नॉलेज इंफॉर्मेशन, तो कौन सी वाली नॉलेज, कौन सा वाला इल्म सही है और कौन सा वाला इल्म गलत है? ठीक है, ये कैसे हम पता करते हैं कि कौन सा वाला इल्म सही इल्म है और कौन सा वाला इल्म गलत इल्म है? ये कैसे पता चलेगा, कोई आप में से बता सकते हैं? अगर आपसे पूछा जाए कि हमें कोई एक क्राइटेरिया बताएं, एक स्टैंडर्ड बताएं, एक मेयार बताएं एक लफ्ज में या दो चार लफ्ज में बताएं कि कैसे आप जज करेंगे कि ये जो मैं इल्म हासिल कर रही हूँ ये फायदेमंद है, या ये जो इल्म हासिल कर रही हूँ ये नुकसानदायक है, कैसे बताएंगे? क्या क्राइटेरिया है मालूम करने का? उन्होंने लिख दिया है, माशाल्लाह जवाब बिल्कुल सही लिखा है, लेकिन डायरेक्ट मैसेज में किसी को समझ में ना आए, नो सॉरी, किसी को नजर ना आए, तो उस वजह से हम उनको आखिर में पढ़ेंगे। जो उन्होंने सबसे पहले जो जवाब दिया वो बिल्कुल सही जवाब है। फिर किसी ने जवाब दिया, जो इल्म शरीयत के मुताबिक हो, जो इल्म शरीयत के मुताबिक हो, तो कौन सा इल्म शरीयत के मुताबिक होता है ये? फिर किसी और ने जवाब दिया कि इज इट इंक्रीजिंग माई मेच्योरिटी और नॉट, मेच्योरिटी और नॉट, वॉट डू यू मीन बाई मेच्योरिटी? कौन सी मेच्योरिटी, क्या मेच्योरिटी, वॉट डज इट, यानी मेच्योरिटी क्या चीज़ होती है? जी वो तो आप तो ऑलरेडी जवाब दे चुके हैं ना, जिन्होंने जवाब दिया। ठीक है, सही जराए से जो इल्म हासिल किया जाए वो फायदेमंद होगा, वो इल्म जो कि सही जराए से हासिल किया जाए वो फायदेमंद इल्म होगा, नहीं कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, सही जराए से ही इल्म हासिल करेंगे तभी वो फायदेमंद हो सकता है, लेकिन उसके फायदेमंद होने के लिए एक और क्राइटेरिया भी है। ठीक है, एक्चुअली गलत जराए से भी इल्म हासिल अगर किया जाए लेकिन वो उस क्राइटेरिया पे पूरा उतरता हो तो फिर वो फायदेमंद इल्म है। इवन अगर गलत जराए से भी हासिल हो गया, अगरचे कि हमें करना तो सही जराए से ही इल्म हासिल है, लेकिन अगर कोई इल्म गलत जराए से भी हासिल हो गया लेकिन वो उस स्टैंडर्ड पर पूरा उतर गया तो फिर वो फायदेमंद इल्म बन जाता है। अभी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीज बन गई है। हुकूक का इल्म, हुकूक का इल्म, मेरा ये हक है, मेरा वो हक है, मेरा ये भी तो हक था, मेरा वो भी तो हक था, तो हुकूक का इल्म ये भी तो होता है, तो हुकूक का इल्म तो कोई जवाब ना हुआ। जो इल्म अल्लाह के करीब करे, दुनिया से दूर करे, आजिजी लाए, वो सही इल्म है, और जो अल्लाह से गाफिल करे, तकब्बुर लाए, वो गलत इल्म है। चलिए माशाल्लाह, इन्होंने लंबे काफ़ी सारे अल्फाज के अंदर सही जवाब दे दिया है, और आप लोगों ने सबने उसको पढ़ भी लिया होगा क्योंकि सामने इन्होंने उसको लिखा है, सबने पढ़ लिया होगा, सुना भी दिया। ठीक है, जो इल्म अपने कमतरी का इजहार करे, ठीक है, देखें एक आयत है कुरान मजीद की, उस आयत से हमें इसका जवाब मिल जाता है। ठीक है, अगरचे के थोड़ा सा इशारतन जवाब मिलता है लेकिन जवाब उसी के अंदर है। वो आयत क्या है? अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल अल उलमा, सिवाय इसके नहीं कि अल्लाह ताला से डरते हैं उसके बंदों में से कौन? अल उलमा, इल्म वाले। ठीक है, तो इल्म वाले जो अल्लाह ताला से डरते हैं, ठीक है ना, इल्म जो है वो अल्लाह ताला की खशियत को बढ़ाने वाला अगर है तब वो फायदेमंद इल्म है, अगर अल्लाह की खशियत नहीं बढ़ रही उस इल्म से तो फिर वो बेफायदा इल्म है, नुकसानदायक इल्म है। ठीक है, इसी को तफसील में लिख दें, अल्लाह के करीब करे, दुनिया से दूर करे, आजजी पैदा हो, आखिरत याद आए, अल्लाह याद आए, ये सब तफसीलात हैं इसकी। ठीक है, या हुकूक की अदायगी की फिक्र पैदा हो, सही है, ये सब तफसीलात हैं, लेकिन वन वर्ड आंसर इज जिससे अल्लाह की खशियत बढ़े। अब जो किसी ने जवाब दिया था कि सही सोर्सेस से हासिल किया जाए, तो भाई सही सोर्सेस से हासिल भी किया जाए जैसे मदारिस, मशायख, उलमा, राइट, लेकिन फिर भी खशियत नहीं बढ़ रही तो फिर नुकसानदायक इल्म है। जैसे आपने अच्छे से किसी मौलाना साहब की तकरीर सुनी वालिदैन के हुकूक के ऊपर, लेकिन बजाय इसके कि वालिदैन का हुकूक अदा करते, उल्टा जो है ना वो अपने हुकूक को मांगने की जो है वो आपने इल्म हासिल कर लिया। ठीक है ना, तो अगरचे कि आपने मशायख से सुन करके वालिदैन के हुकूक का मालूम का इल्म हासिल किया लेकिन उस इल्म से आपकी खशियत तो नहीं बढ़ी ना। तो कहने का मकसद ये है कि सही सोर्स होना तो जरूरी है लेकिन दैट इज नॉट द फाइनल स्टैंडर्ड। ठीक है ना, अच्छा गलत सोर्स से इल्म हासिल हो गया, हमें करना नहीं चाहिए, लेकिन कहीं से आपने सुन लिया कोई ऐसी चीज जिसके सुनने से आपको अल्लाह ताला की खशियत बढ़ गई, राइट? जैसे अखबार, अखबार के अंदर जो है वो हर किस्म की उल्टी सीधी चीजें आती हैं, तो अखबार नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन आपकी नजर पड़ गई कभी, आपने कभी जो है ना वो किसी मकसद से जो है वो अखबार देख लिया, उसमें कोई ऐसी खबर आपने पढ़ी, कोई ऐसी चीज आपने पढ़ी जिससे कि अल्लाह की खशियत बढ़ गई, वो इल्म आपके लिए फायदेमंद इल्म हो गया, ठीक है? तो ये स्टैंडर्ड है। अब ये जो है ना फिर दीनी उलूम पर भी अप्लाई होता है, ये दुनियावी उलूम पर भी अप्लाई होता है, ठीक है ना? दुनियावी उलूम से भी अगर खशियत बढ़ रही हो, ऐसा ना हो कि दुनियावी उलूम हासिल कर रहा है और जो है ना वो दुनिया की खशियत बढ़ रही है, दुनिया वालों का खौफ बढ़ रहा है, ठीक है ना, काफिरों का खौफ बढ़ रहा है, ओहो काफिरों ने कितनी तरक्कियां कर ली, तरक्कियात कर ली हैं, उन्होंने कैसे कैसे जो है ना वो टेक्नोलॉजी बना ली है, उन्होंने जो है वो कैसे कैसे हथियार बना लिए हैं, उनका स्पेस प्रोग्राम कितना कामयाब है, उनके जो है वो सर्वेलेंस प्रोग्राम है, वो लोगों के घरों के अंदर घुस करके जो है ना वो उनकी चीजें मालूम कर लेते हैं, ऐसी ऐसी उनकी जो है वो डिवाइसेस हैं, और पूरी दुनिया के ऊपर उन्होंने राज हासिल कर लिया है। ये साइंस का इल्म हासिल करके क्या चीज बढ़ रही है? ये काफिर की खशियत बढ़ रही है, ये अल्लाह की खशियत नहीं बढ़ रही, ये काफिरों की खशियत बढ़ रही है, उनकी अजमत जो है वो दिल में पैदा हो रही है, उनका खौफ दिल में पैदा हो रहा है, या उनकी मोहब्बत दिल में पैदा हो रही है, राइट? ऐसे साइंस का इल्म, ऐसे मेडिसिन का इल्म, मेडिकल साइंस का इल्म, ऐसी टेक्नोलॉजी का इल्म, ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इल्म, ये इल्म नुकसानदेह है, ये फायदा मंद इल्म नहीं है, ये नुकसानदेह इल्म है, ठीक है? लेकिन अगर साइंस को इस तरीके से पढ़ा जा रहा है कि जिससे कि अल्लाह ताला की अजमत बढ़ रही है, काफरों की अजमत नहीं बढ़ रही बल्कि अल्लाह की अजमत दिल में बढ़ रही है, तब साइंस का इल्म जो है वो फायदा मंद इल्म है, ठीक है? और यही चीज जो है वो उसके ऊपर भी है, कुरान हदीस के इल्म के ऊपर भी यही स्टैंडर्ड अप्लाई होगा। कुरान हदीस का इल्म हासिल करके अगर अल्लाह की खशियत पैदा होने के बजाय किसी और किस्म की खशियत पैदा हो रही है, या अल्लाह की अजमत दिल में पैदा होने के बजाय अपने नफ्स की अजमत दिल में पैदा हो रही है कि देखो कितना आ गया मुझे, कितना इल्म मैंने हासिल कर लिया, ये भी पढ़ लिया, वो भी आ गया, अरबी जुबान की भी महारत हासिल हो गई, तफसीर के उसूल भी मुझे सारे पता चल गए, हदीस के उसूल भी मुझे सारे पता चल गए, हैं? तो फिर कुरान और हदीस का इल्म ये भी नुकसानदेह इल्म हो गया, ये भी नुकसानदेह इल्म हो गया, ठीक है? तो इस स्टैंडर्ड को उम्मीद है कि आप याद ना सिर्फ खुद रखेंगी बल्कि आगे दूसरों तक भी इसको ट्रांसफर करेंगी, अपनी खुसूसन अपनी औलादों की तरफ। अच्छा, आगे फरमाते हैं पेज नंबर 530 के ऊपर, कुल ला इन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन्नु, कह दीजिए कि अगर इंसान और जिन ये जमा हो जाए, ये इकट्ठे हो जाए, ठीक है? तो इसकी फिर तफसीर में लिखते हैं कि ये मजमून कुरान मजीद की चंद आयात में आया है जिसमें पूरी दुनियाए इंसान को खिताब करके ये दावा किया गया है, पूरी इंसानी दुनिया को खिताब करके ये दावा किया गया है कि अगर तुम कुरान मजीद को अल्लाह का कलाम नहीं मानते बल्कि किसी इंसान का बनाया हुआ मानते हो, तो फिर तुम भी तो इंसान हो, इसकी मिसाल बना के दिखला दो, इसकी मिसाल बना के दिखला दो। इस आयत में इस दावे के साथ ये भी फरमा दिया गया कि सिर्फ इंसान नहीं, जिन्नात को भी तुम अपने साथ मिला लो, और फिर तुम सब मिलकर कुरान मजीद की एक सूरत बल्कि एक आयत की मिसाल बिना बना सकोगे, ठीक है? इस मजमून का इस जगह पर इरादा मुमकिन है कि ये बतलाने के लिए हो, यानी यहाँ पर जो अल्लाह ताला ने इस मजमून को दोबारा से, क्योंकि कुरान मजीद के और मकाम के ऊपर भी इस तरीके से अल्लाह ताला ने जो है ना वो ये दावा किया है और ये चैलेंज किया है इंसान को ना, ठीक है, कि तुम जरा एक आयत सूरह बकरा के अंदर ही, बिल्कुल शुरू के अंदर ही ना? तो ये यहाँ पे दोबारा इस मजमून को अल्लाह ताला ने क्यों बयान किया? हो सकता है, मुमकिन है, हजरत लिख रहे हैं कि मुमकिन है कि ये बतलाने के लिए हो कि तुम जो हमारे रसूल से मुख्तलिफ किस्म के सवालात रूह वगैरह के मुतालिक उनकी रिसालत और नबूवत की आजमाइश के लिए करते हो, क्यों इन फजूल किस्सों में पड़े हो? खुद कुरान करीम को देख लो तो आपकी नबूवत व रिसालत में किसी शक व शुबह की गुंजाइश नहीं रहती, ठीक है, तुम सिर्फ कुरान मजीद की आयात को देख लो ना, नए नए सवाल करने के बजाय जो चीज तुम्हारे सामने मौजूद है कुरान मजीद, जो कि नबी अलैहिस्सलाम तुम्हें बता चुके हैं, राइट, तुम्हें पढ़ के सुना चुके हैं और लोगों को याद हो चुका है वो कुरान मजीद, है ना, सहाबा कराम ने तो याद कर लिया था ना, तो जो चीज अवेलेबल है तो तुम उसको क्यों नहीं पढ़ते, ठीक है ना, तुम उसको क्यों नहीं सोच रहे? ये अब ये मिसाल जो है ना, ये बहुत ही हम एक मिसाल देते हैं, ठीक है, जो कि आजकल बहुत ज्यादा होती है, हमारे आपस की मिसाल, ठीक है ना, वो क्या है कि कुछ लोग जो है ना वो किसी शेख साहब के पास आते हैं, ठीक है ना, कोई आलम दीन है, कोई शेख है, ठीक है, तो अब उनके पास आकर के जो है ना वो क्या करना शुरू कर देते हैं, वो पूछना शुरू कर देते हैं, आप मुझे उसके बारे में बताएं वो क्या कह रहा था, है ना, YouTube के ऊपर किसी की वीडियो देख करके आ जाते हैं, ठीक है, और आकर के शेख साहब से पूछते हैं, वो इंजीनियर जो था ना, या वो जो गामदी था ना, या वो जो पता नहीं कौन था ना, तो वो ये कह रहा था, तो उसका क्या मतलब है, वो ये क्यों कह रहा था, वो ऐसे क्यों कर रहा था, ठीक है ना। अब शेख साहब जो हैं वो मतलब पहली बात तो ये कि शेख साहब ने क्या सब कुछ सुना हुआ है, सबकी वीडियो सुनी हुई है, सबके बारे में उनको पता है कि जी फलाना फितना जो है वो क्या कह रहा है, फलाना फितना जो है वो क्या कह रहा है, ठीक है ना, तो शेख साहब फिर उनको कहते हैं कि भाई आप जो है ना वो ऐसा करें, पहले थोड़ा सा इल्म हासिल करें, आप जरा हमारे पास आया करें, हमारे जो बयानात हैं उनको आप सुना करें, आप जो है वो थोड़े क्लासेस वगैरह लिया करें, आपका थोड़ा बेस बने, थोड़े आपके जो है वो फाउंडेशन बने, तब आपको जो है ना वो सारी चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी, फलाना क्या कह रहा है, सही कह रहा है, गलत कह रहा है, ये सब आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा, लेकिन आप पहले हमें तो सुने ना, राइट, हमसे कुछ मुनासिबत तो आप बनाए ना, ठीक है ना, तब ये होगा कि जब हमसे आपकी कुछ मुनासिबत बनेगी ना, यानी जब आप हमारा कलाम सुनेंगे, हमारा बयान सुनेंगे, हमारी क्लासेस लेंगे, तो फिर आपको हमारी लैंग्वेज समझ में आनी शुरू हो जाएगी, हम जिस तरीके से बात करते हैं, हम जिस चीज को अहमियत दे के बात करते हैं, जिस चीज की जो है वो बुराई बयान करते हैं, यू विल बिकम फेमिलियर विद ऑल ऑफ दैट, इसी को कहते हैं मशाइख की जुबान में मुनासिबत पैदा हो जाना, क्या कहते हैं इसको, मुनासिबत पैदा हो जाना, शेख के साथ जो है ना मुनासिबत पैदा हो गई है, यानी आपको शेख का असलूब समझ में आना शुरू हो गया है, शेख की बात समझ में आनी शुरू हो गई है, अब शेख साहब जो है ना वो आपको जो चीज बताएंगे आपको समझ में भी आ जाएगी, किसी दूसरे के बारे में, किसी तीसरे के बारे में, ठीक है ना, लेकिन लोग ये नहीं करते, लोग शेख साहब को नहीं सुनेंगे, शेख साहब की बातें नहीं पढ़ेंगे, उनके मैसेजेस नहीं पढ़ेंगे, बल्कि क्या करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए होंगे, वहां पे जो है वो उल्टे सीधे मैसेजेस पढ़ते रहेंगे, ठीक है ना, YouTube वीडियोस जो हैं उनके ऊपर जो है वो हर वक्त इधर से उधर, उधर से उधर जंप अराउंड करते रहेंगे, TikTok की वीडियोस, YouTube की वीडियोस, है ना, और फिर उसके अंदर कोई दिमाग में, इनके दिमाग में कुछ उल्टी सीधी ना समझ में आने वाली वाली बात होगी, तो वो आकर के शेख साहब से पूछना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, तो क्या ये सही तरीका है, ये तो नहीं है ना, आपको तो भाई शेख साहब की बात सुननी चाहिए थी, उनसे मुनासिबत पैदा करनी चाहिए थी, तो ये एक बहुत ही छोटी सी मिसाल है, हम इंसानों की दुनिया की मिसाल है, ठीक है ना, कि हम जिसके साथ हमने, यानी जो जिनके साथ ताल्लुक बनाना चाहिए उनके साथ ताल्लुक बनाए, मुनासिबत पैदा करें, तब जो है वो हमारा इल्म बढ़ेगा और हमें फायदा होगा, हम बाकी चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी, यही मिसाल अगर आप सबसे बड़ी हकीकत पे उसको इंतबा मुंतबिक कर लें, इसको सबसे बड़ी हकीकत के ऊपर, तो भाई यहां पर भी यही कह रहे हैं ना मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह, यहाँ पे यही समझा रहे हैं कि अल्लाह ताला जो है ना उसने ये वाली मिसाल, ये बात यहाँ पर क्यों करी कुरान मजीद के बारे में, कि तुम जो है वो जो मेरा कलाम है, जो मेरे रसूल की बातें हैं, जो मौजूद है तुम्हारे सामने, तुम उनको तो सुनते नहीं हो, और जो है ना वो इधर उधर की लेकर के आते रहते हो, मुझे ये बता दे, मुझे वो बता दे, मुझे ऐसे कर दे, मुझे वैसे कर दे, हैं थर्ड पर्सन की बातें लेकर के आते रहते हो, पूछते रहते हो उस कदम की, रूह की हकीकत बता दे, ठीक है, तो कुछ बातों का तो सवाल, क्योंकि तो अल्लाह की बात है, अल्लाह ताला को तो सब कुछ का पता है। तो अल्लाह ताला ने सूरह वो असहाबे कहफ के बारे में उन लोगों ने सवाल किया ना, उस वक्त भी सूरह कहफ तो नाजिल नहीं हुई थी, वो सामने मौजूद नहीं थी, लेकिन उन लोगों ने असहाबे कहफ के बारे में सवाल किया। अल्लाह ताला को तो सब कुछ पता है, अल्लाह ताला ने बता दिया असहाबे कहफ के बारे में। उन्होंने ज़ुल्क़रनैन के बारे में सवाल किया, अल्लाह ताला को तो सब कुछ पता है, अल्लाह ताला ने ज़ुल्क़रनैन के बारे में ही बता दिया। उन्होंने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में सवाल किया, अल्लाह ताला को सब कुछ पता है, अल्लाह ताला ने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में बता दिया। लेकिन जब उन्होंने रूह के बारे में सवाल किया ना, तो अल्लाह ताला एक जिस तरह से हम अपने लैंग्वेज में बात करते हैं ना, कि हमारी भी बस हो गई, राइट। हमने कहा यार मेरा दिमाग मत खाओ, जैसे हम कहते हैं ना यार बस करो यार मेरा दिमाग नहीं खाओ, ठीक है मुझे पता तो है लेकिन मैं नहीं बताऊंगा तुम्हें, कहते हैं ना हम कभी, ठीक है मुझे पता तो है लेकिन मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा क्योंकि ये तुम्हारी आदत बन गई है ना, फजूल की जो है तुम सवाल करते रहते हो मुझसे। भाई जो मेरी बात है उसको तो आकर के पढ़ो ना, उसको तो तुम सुनो ना, उसको तो तुम सुनते नहीं हो, उसको तो तुम पढ़ते नहीं हो, इधर उधर की जो है ना वो ला करके सुनते रहते हो, पूछते रहते हो मुझसे, मैं नहीं बताता तुम्हें, ठीक है ना। तो गोया कि रूह का भी मामला जो है ना वो कुछ ऐसे ही हो गया कि अल्लाह रब्बुल ने कहा बस करो मैं नहीं बताता तुम्हें, हालांकि अल्लाह ताला को रूह का नहीं पता, ठीक है हमारे समझ में नहीं आ सकता जो भी है, ठीक है ना, लेकिन अल्लाह को तो सब कुछ पता है ना, लेकिन अल्लाह ताला मैं नहीं बताता तुम्हें, बस हो गया खत्म बात। अब जो है ना तुम्हारे सामने उसको पढ़ो, कुरान को पढ़ो तुम, ठीक है ना, देखो ये कैसी चीज तुम मैंने तुम्हें दी है, तुम सब मिल करके भी इसके बराबर की चीज नहीं लेकर के आ सकते, वो चीज मैंने तुम्हारे हाथों में दे दी है, कदर करो तुम उसकी, राइट। ये जो असरार व मारिफ मैंने तुम्हें दे दिए हैं ना, तुम्हें अता कर दिए हैं, तुम इनको पढ़ो, तुम इनको समझो, ताकि मेरे और तुम्हारे दरमियान मुनासिबत पैदा हो, तुम्हें मुझसे मुनासिबत पैदा हो, तुम्हें मेरी लैंग्वेज समझ में आना शुरू हो जाए, तुम्हें मेरा असलूब समझ में आना शुरू हो जाए, तब तुम्हारे ऊपर हकायक खुल जाएंगे तुम्हारे। जब तुम्हें मेरा असलूब समझ में आना शुरू हो जाएगा ना, अल्लाह ताला की तरफ से, ये मैं खाली आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं ये वाली बात, अल्लाह ताला की तरफ से उनको कहा जा रहा है तुम मेरे जो एग्जिस्टिंग कलाम है तुम्हारे पास, तुम उसके ऊपर अपना वक्त लगाओ, उसको सोचो, उसको पढ़ो, फिर तुम्हें सारी चीजें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है ना। इसी वजह से मुफ्ती शफी रहमतुल्लाह ने पीछे यह बात भी लिखी है कि रूह की हकीकत ऐसी नहीं है जो किसी के भी समझ में ना आ सके, रूह की हकीकत ऐसी नहीं है जो किसी के भी समझ में ना आ सके, जो अल्लाह ताला के मुकर्रब लोग होते हैं जिनके ऊपर अल्लाह ताला हकायक खोल देते हैं, उनको रूह की हकीकत भी समझ में आनी शुरू हो जाती है, उनको रूह की हकीकत भी समझ में आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो तरीका क्या है इसको हासिल करने का, इन हकीकतों को समझने का तरीका क्या है, अल्लाह के कलाम जो तुम्हारे सामने मौजूद है उसकी कदर करो, उसको पढ़ो, उसको समझो, तब तुम्हारे ऊपर हकायक खुल जाएंगे, तब तुम्हें और बातें भी समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन ये तरीका सही नहीं है कि तुम्हारे सामने जो नेमत मौजूद है उसको तो तुम करो परे, उसको तो तुम करो साइड पे, और जो है ना वो इधर उधर की लेकर के आना शुरू कर दो, जैसे कि हम कर रहे हैं आजकल, डी फोकस्ड, किसी के ऊपर फोकस नहीं करते हैं, किसी चीज के ऊपर हम फोकस नहीं करते, हत्ता कि हम अल्लाह के कुरान पर फोकस नहीं करते, अपने मशायख पर क्या फोकस करेंगे, हम तो अल्लाह के कुरान पे फोकस नहीं करते, हम तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर फोकस नहीं करते, फिर तो क्या बनेगा हमारा, ठीक है। तो इस मजमून का इस जगह पर इआदा मुमकिन है कि ये बतलाने के लिए हो कि तुम जो हमारे, एक मिनट जरा होल्ड कीजिएगा मुझे एक ब्रेक लेनी है, इस मजमून का इस जगह पर इआदा मुमकिन है कि ये बतलाने के लिए हो कि तुम जो हमारे रसूल से मुख्तलिफ कस्म के सवालात रूह वगैरह के मुतालिक उनकी रिसालत और नबूवत की आजमाइश के लिए करते हो ना, क्यों तुम इन फजूल कस्म में पड़े हो, खुद कुरान करीम को देख लो, राइट। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुवत और रिसालत में किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं रहेगी, क्योंकि जब सारी दुनिया के जिन्न इंस इसकी अदना सी मिसाल बनाने से आजिज हैं, तो उसके कलाम इलाही होने में क्या शुबा रहता है, और जब कुरान करीम का कलाम इलाही होना इस बदाहत से यानी इतना अपेरेंटली, इतना ऑब्वियसली साबित हो गया है, तो आपकी नबुवत व रिसालत में किसी शुबों की गुंजाइश रहती है। ठीक है, अच्छा ये बात पहले भी हो चुकी है, तो गोया के समझ लें आपके इम्तिहान के लिए, या वैसे भी जिन्होंने नहीं भी सुनी है पुरानी बात, पहले बात जो हो चुकी है हमारे यहाँ, तो उनकी वैसे ही क्विज करने के लिए, उनसे पूछने के लिए कि उस, यानी हम आपसे ये सवाल कर रहे हैं कि भाई उस जमाने में कुरान मजीद की मिसल बनाने से क्या मुराद थी। ये जो कहा जा रहा है ना कि तुम जो है वो इसकी मिसल बना करके ले आओ, या तो मिसल हाजर कुरान है, सही है, तो उमूमी तौर पर, बल्कि कहना चाहिए कि उमूमी तौर पर जनरली स्पीकिंग उस जमाने में कुरान मजीद की मिसल बनाने का मतलब जो है वो क्या था। आज भी कहते हैं कि जी उन लोगों को जो चैलेंज किया गया था, तो वो किस किस वजह से ऐसा चैलेंज किया गया था जी, क्या वजह, क्यों चैलेंज किया जाता था उनको। क्योंकि कुरान मजीद जुबान जुबान का इसमें था ना, कि कुरान मजीद उनकी अपनी जुबान में था, अरबी जुबान में था, और जैसे कि आपने जवाब लिखा कि वो लोग जुबान और बयान में उबूर रखते थे, अरबी जुबान के वो यानी ऐसे माहिर थे, ऐसी बेहतरीन जो है वो अरबी जुबान बोलते थे, उसके अशआर जो है वो पढ़ा करते थे, याद किया करते थे, उनको क्या क्या कुछ नहीं याद थे, ठीक है, अरबी जुबान के अशआर, और ऐसी फसाहत तो बलागत थी उनकी जुबान के अंदर उनके हिसाब से। तो उनको जो ये चैलेंज किया जाता था कि देखो तुम इस फसाहत तो बलागत के साथ जो है वो कुछ अरबी में लिख करके बताओ, कुछ कुछ जो है वो बोल के बताओ, तुम बोल ही नहीं सकते। और वाकई उन्होंने कोशिश करी, लेकिन उनमें से कोई भी जो है वो इसके अंदर कामयाब नहीं हो सका। इसके ऊपर जो है वाकयात भी बयान किए जाते हैं कि वो इन्ना आतीना कल कौसर फसल्ले लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर, है कि ये जो है ना, ये तीन आयात हैं, इनका जो है वो चौथा जो है ना वो मिसरा मुकम्मल करके दिखाओ, तो कोई भी मुकम्मल नहीं कर सका, हत्ता कि एक ने आकर के लिख दिया वहां पे, जहां पे दीवार पे किसी ने लिखा था कि मा हादा कौलुल बशर, ये एक बशर का कॉल नहीं हो सकता। इस तरह से उसने जो है ना वो सूरह कौसर को जो है वो मुकम्मल किया, चौथा मिसरा बना करके, कि चौथा मिसरा उसका यही था कि ये बशर का कॉल है ही नहीं, ठीक है ना। तो अरबी जुबान का एजाज, कुरान मजीद का ये वाला एजाज, अरबी जुबान वाला, ठीक है। आज के जमाने में ऐसे अरबी दान लोग जो है वो अगर हैं भी, तो वो सारे मुसलमान ही हैं, पहले ही मुसलमान है वो, तो आज काफिर के सामने जो है वो अरबी जुबान वाला तो फिर चलता ही नहीं है, क्योंकि काफिरों को तो अरबी जुबान आती नहीं है। तो आज क्या कुरान मजीद का ये चैलेंज खत्म हो गया, इररिलेवेंट हो गया आज के जुबान, आज के जमाने में कुरान मजीद का ये चैलेंज जो है क्या वो अप्लाई नहीं होता, क्या वो इररिलेवेंट हो गया कि तुम सारे के सारे इंसान और जिन मिल करके भी जो है ना वो इस जैसी कोई चीज नहीं बना सकते। तो इसके ऊपर फिर कुछ रोशनी डाल सकता है कोई। आपने भी ये लिखा था कि वो शेर व शायरी के माहिर थे और इससे कुरान को मिलाते थे, तो कुरान जैसी वो कोई भी शेर व शायरी, कोई भी नसर, कोई भी नज़म, कुछ भी नहीं कह सके वो, तो वो हार गए इसके अंदर ना, इस चैलेंज में। आज के ज़माने में तो कोई शेर व शायरी का एक्सपर्ट है भी नहीं वैसे भी, ठीक है, और काफिर जो हैं वो तो खास तौर पर उनमें से तो अरबी दान ही बहुत, एक आदि कोई मिलेगा अगर मिलेगा तो, लेकिन वो भी उस दर्जे का तो अरबी दान ही हो सकता है ना, ठीक है। मुसलमानों में तो चले उन्होंने बड़ी फसाहत और बलागत वाले अदब और लुगात और ये सब कुछ पढ़ा होता है, आज भी मदारिस के अंदर ये सब कुछ पढ़ाया जा रहा होता है, लेकिन भाई वो तो पहले से ही मुसलमान है, उनको क्या कुरान मजीद का चैलेंज, वो तो अपने ईमान की सलामती के लिए वो तो कभी सोच भी नहीं सकते इस तरीके से कि हम कुरान के चैलेंज को जो है ना वो जवाब देने की कोशिश करें, वो तो काफिर हो जाएंगे फिर उसके बाद, तो इस वजह से मुसलमानों ने तो वैसे ही जवाब नहीं देना, काफिरों में तो अरबी जुबान का इल्म ऐसा है ही नहीं, ठीक है। तो फिर आजकल का क्या चैलेंज है, आजकल जैसे उन्होंने जवाब दिया साइंस, ठीक है, साइंटिफिक चैलेंज है ये, ठीक है, यानी जो दुनिया की जो जो मखलूकात अल्लाह ताला ने बनाई है, कायनात जो बनाई है, जमीन और आसमान, तो इसकी जो अल्लाह ताला ने जो इसके बारे में तुम्हें कुरान मजीद के अंदर बताया है ना, इस दर्जे का जो इल्म है वो तुम यानी तसव्वुर ही नहीं कर सकते कि तुम में से कोई इंसान या कोई और मखलूक जो है वो इस दर्जे का जो है वो इल्म बता सके, इस दर्जे का इल्म कोई बता सके सिवाय जिसने इसको बनाया है, सिवाय जिसने इस कायनात को बनाया है, उसके अलावा कोई कह ही नहीं सकता इस तरह की बात, ठीक है ना। तो इसमें एक मिसाल जो है वो, हम तो वैसे भी बहुत कम इल्म किस्म के लोग हैं, तो एक आध मिसाल ही कहीं से पढ़ ली तो अल्लाह ने तौफीक दी, कुछ सोच वोच लिया उनके बारे में, तो बस एक आध मिसाल है। तो आपके सामने हमने एक मिसाल जो है वो रखी हुई है पिछले कुछ टाइम से, उसी के ऊपर जो है वो हम लेके बात करे चले जा रहे हैं। तो किसी को याद है वो एक आध मिसाल जो कि ऐसा दावा है कुरान मजीद के अंदर जो कि कोई कर ही नहीं सकता ऐसा दावा, ठीक है ना। है तो बहुत सारे ऐसे ऐसे मुकामात कुरान मजीद के अंदर, लेकिन हम जैसे कम इल्मों के पास दो ही मुकामात इस वक्त जहन के अंदर है। वो कौन से दो मुकामात हैं? रिसेंटली उनके ऊपर बयानात में और क्लासेस के अंदर काफी बात हुई है। दो एग्जाम्पल्स, जस्ट टू एग्जाम्पल्स, कौन से किसी को याद है? जी माशाल्लाह, उन बच्चों की जिनकी के क्लास के अंदर ये वाली बात हुई है उनकी अम्मियों को तो कम से कम याद रहना चाहिए ना, ठीक है, या उनकी अम्मियों को कम से कम पता तो होना चाहिए ना। तो माशाल्लाह एक वालदा ने जो है वो बिल्कुल सही जवाब दिया, प्लेसमेंट ऑफ अर्थ इन द यूनिवर्स, अल्लाह रब्बुल इज्जत जो, हाँ माशाल्लाह। और दूसरी मिसाल, दूसरी जो बात हम करते आ रहे हैं रिसेंटली, वो ये है पानी, ठीक है। तो पहली वाली क्या थी? सूरह रहमान की आयत, वल अर्दा वदाहा लिल अना, ठीक है, कि हमने इस जमीन को ऐसे प्लेस किया है कि जो के हयात के लिए है, लिल अनाम, हयात के लिए, जिंदगी के लिए, ठीक है। तो इसकी प्लेसमेंट ऐसी है कि इसकी प्लेसमेंट यानी इसका जो 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 जगह है ना, इसकी अल्लाह की इस पूरी की पूरी कायनात के अंदर जो जमीन की जगह है, ये जगह जिंदगी के लिए जरूरी है। अगर जगह इसकी जगह कहीं और होती, जमीन, जिंदगी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। तो अब जो है ना, वो मॉडर्न साइंस ने, एस्ट्रोनॉमी ने, इन लोगों ने इसको जो तहकीकात करके प्रूफ किया है इस बात को कि वाकई अगर जमीन यहां होने की बजाय कहीं और होती, या थोड़ी सी आगे पीछे भी अगर हो जाती, थोड़ी सी आगे पीछे भी अगर हो जाती, तो जिंदगी हो ही नहीं सकती थी, जिंदगी बरकरार रह ही नहीं सकती थी इसके ऊपर, ठीक है ना। अब कौन ऐसा दावा कर सकता है? इन लोगों ने जो साइंसी तहकीक करी है तो उन्होंने तो खाली ऑब्जर्व करके बताया ना, इन्होंने कुछ बनाया कोई थोड़ी है, इन्होंने कोई दावा कोई थोड़ी किया है, राइट। ये तो जो ऑब्जर्व करते हैं वो बता देते हैं, जो उनको समझ में आता है वो बता देते हैं। दिस इज व्हाट साइंस इज, साइंस इज बेसिकली जस्ट ऑब्जर्वेशन, राइट। और ऑब्जर्वेशन को जो है वो फिर उससे कुछ नताइज डिड्यूस करके बता देना। नबी अलैहिस्सलाम या उस जमाने का कोई भी साइंसदान, वो तो इतनी ऑब्जर्वेशन भी नहीं कर सकता था, कुछ था ही नहीं अवेलेबल, कोई टूल्स ही अवेलेबल नहीं थे, कोई रिसोर्सेज ही अवेलेबल नहीं थे कि वो ऐसा बड़ा दावा कर सके कि वल अर्दा वदाहा लिल अना, इसकी पोजिशनिंग ऐसी है कि जिसके ऊपर जिंदगी डिपेंड करती है, कौन कर सकता था ऐसा दावा। और दूसरा दावा कुरान मजीद का, जो कि हम जैसे कम इल्म लोग रिसेंटली बहुत बात करते रहे उसके ऊपर, वो ये कि जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद के अंदर ये दावा किया, वजअलना मिनल माई कुल्ल शैइन हय وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ، ہم نے پانی سے ہر چیز کو تخلیق کیا، اور پھر اس کے بعد بات کو مکمل فرماتے ہیں، اَفَلَا يُؤْمِنُونَ، کیا تم ابھی بھی ایمان نہیں لے کر کے آؤ گے؟ کیا تم ابھی بھی ایمان نہیں لے کر کے آؤ گے؟ کیا مطلب ابھی بھی ایمان نہیں لے کر کے آؤ گے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ بھی آپ ہی بتا دیں، یہ کیوں کہا کہ افلا یؤمنون، یہ کیوں نہیں کہا افلا یعقلون، افلا تذکرون، بلکہ یہ کیوں کہا کہ افلا یؤمنون؟ افلا یعقلون کا مطلب ہوگا کہ تم ابھی بھی عقل استعمال نہیں کرتے، افلا تذکرون کا مطلب ہوگا تم ابھی بھی ہدایت نہیں حاصل کرتے. اللہ تعالیٰ نے ایک اسپیسیفکلی یہاں پر ایک لفظ استعمال کیا ہے، افلا یؤمنون. یؤمنون کا مطلب کیا ہے؟ کہ کیا تم ابھی بھی ایمان نہیں لے کر کیا ہوگے؟ کیا مطلب ہے یؤمنون کا؟ In one documentary, they called Earth the Goldilocks planet, meaning it's that its placement is just perfect, perfectly placed with the perfect climate. Goldilocks shayad wo Disney character ko hai na, is qisam ki bahut hi achhi La La Land mein rehne wale koi character hai shayad wo, yaad nahi. To afala yu'minun ka matlab kya hai? کہ ہم نے آپ کو حق دکھا دیا تو اب آپ تصدیق کر لیں. کیا مطلب آپ کی بات سن رہی ہے؟ افلا یؤمنون کا مطلب کیا؟ ٹھیک ہے، افلا یؤمنون کا مطلب یہ ہے کہ کیا تم ابھی بھی ایمان نہیں لاؤ گے؟ کس پر ایمان نہیں لاؤ گے؟ کس چیز کے اوپر، کس بات کے اوپر ایمان نہیں لاؤ گے؟ کیا تم ابھی بھی یہ کہ جو تمہیں یہ بات بتا رہا ہے، رائٹ، جو تمہیں یہ بات بتا رہا ہے وہ اللہ کا رسول ہے، خالق کا رسول ہے، کیونکہ یہ بات کوئی بھی انسان اپنی طرف سے نہیں بتا سکتا، یہ بات صرف اور صرف خالق بتا سکتا ہے. اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی خود خالق ہونے کا دعویٰ نہیں کیا کہ میں خالق ہوں. نبی علیہ السلام نے کبھی یہ دعویٰ کیا کہ میں نے یہ کائنات اور یہ زمین بنائی ہے، اس وجہ سے میں تمہیں ساری باتیں بتا رہا ہوں؟ نہیں، نبی علیہ السلام نے تو کبھی خالق ہونے کا دعویٰ ہی نہیں کیا. نبی علیہ السلام نے کس بات کا دعویٰ کیا؟ میں خالق کا پیغمبر ہوں، میں خالق کا رسول ہوں، اور یہ جو کلام میں تمہیں سنا رہا ہوں یہ خالق کا کلام ہے. رائٹ، تو اتنا بڑا دعویٰ تمام مخلوق کے بارے میں کون کر سکتا ہے؟ صرف خالق کر سکتا ہے، یا خالق کا رسول جو ہے وہ بتا سکتا ہے کہ یہ خالق کا کیا بتاوا ہے. اور یہی تو ایمان ہے، اسی کو تو ایمان کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو تم اللہ کا رسول مان لو. یہ نہیں ایمان ہے کہ تم نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کو خالق مان لو، نبی علیہ السلام کو اللہ مان لو، یہ ایمان نہیں ہے. نہ یہ ایمان ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے وجود کے قائل ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ کے وجود کا قائل تو عیسائی بھی ہوتا ہے، یہودی بھی ہوتا ہے، وہ مشرکین مکہ بھی اللہ کے وجود کے قائل تھے، ہندو بھی اللہ کے وجود کے قائل ہیں، برہمن بھی، جتنے یہ کیا بدھ مت بھی اللہ کے وجود کے قائل ہیں، ہر قسم کے لوگ اللہ کے وجود کے قائل ہیں. تو یہ ایمان کوئی تھوڑی ہے اللہ کے وجود کا قائل ہو جانا، اللہ کے رسول کا قائل ہو جانا کہ یہ نبی علیہ السلام اللہ کے رسول. ٹھیک ہے، تو یہاں پر کیا کہ یہاں پہ آج کے دور کے اندر بھی کون ایسا دعویٰ کر سکتا ہے؟ پوری کائنات کے بارے میں کون ایسا یعنی ڈٹرمنسٹک قسم کا جو ہے وہ سٹیٹمنٹ میں پلیس کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا، نیوٹنز لا آف موشن وہ بھی فیل ہو گئی، رائٹ، آئنسٹائنز تھیوری آف ریلیٹیوٹی اس کی بھی جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی اس کے دوسرے ایکسپلینیشنز موجود ہوتی ہیں، لیکن اس یہ والی جو سٹیٹمنٹس ہیں کہ ہم نے زمین کو ایسے رکھا ہے جیسے کہ جس کے بغیر نہیں ہو سکتی لائف، اور ہم نے پانی سے ہر چیز کو بنایا ہے، ایسی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ کوئی بھی نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تو صرف اور صرف خالق ہی سٹیٹمنٹ کر سکتا ہے نا، وہ خالق کے رسول تمہیں بتا رہے ہیں کہ میں اس کا رسول ہوں، مان لو اس بات کو، پھر بھی تم نہیں مانتے. تو پھر اللہ رب العزت آخر میں کیا فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كَفُورًا. फिर भी ये लोग नहीं मानते हैं। आखिरी आयत में ये बतला दिया कि अगर कुरान करीम का मौजा इतना खुला हुआ है कि उसके बाद किसी सवाल और शक व शुबे की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती, मगर हो ये रहा है कि लोग अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा नहीं करते, नेमत कुरान की भी कदर नहीं पहचानते, इसलिए गुमराही में टकते रहते हैं। ठीक है ना, नेमत कुरान की कदर, नेमत कुरान की कदर क्या है कि इसको हतमी समझना, 100% इसकी बात को जो है ना वो एक्यूरेट समझना, इसके बारे में किसी किस्म के शक व शुबे में मुबतला नहीं होना। अंग्रेजी में इसको कहते हैं सर्टेनिटी, सर्टेनिटी, यकीन जिसको उर्दू में कहते हैं यकीन। ठीक है, ये है मुसलमान की, यही शान है कि उसको कुरान मजीद के ऊपर 100% सर्टेनिटी हो, 100% यकीन। ठीक है ना, इसके ऊपर इस साजिश ने दो तहरीरें, बहुत ही बेहतरीन दो तहरीरें, एक मोमिन की तहरीर, एक काफिर की तहरीर। ठीक है ना, एक काफिर की तहरीर 1994 में एक अमेरिकन स्कॉलर ने, गैर मुस्लिम अमेरिकन स्कॉलर ने कुछ आर्टिकल्स लिखे थे जो कि दुनिया के सबसे मशहूर तरीन जरीदा इकोनॉमिस्ट के अंदर छपे थे। ठीक है, उसमें से जो पहला आर्टिकल था उसके ऊपर हम कोई 9 जो है ना वो बयानात अपने जुमे की मजलिस के अंदर कर चुके हैं, दो 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 साल हो गए तकरीबन उसको। ठीक है, उसने अपने उस आर्टिकल के अंदर मुसलमानों के जो जो डिस्क्राइब किया था ना, उसके अल्फाज यही थे कि ये जो मुस्लिम सिविलाइजेशन है ना, ये कुरान को सर्टेनिटी मानते हैं। यानी उस बंदे ने जो काफिर था, उस काफिर ने ईमान की हकीकत को समझा, अगरचे के तस्लीम नहीं किया, इसलिए मुसलमान नहीं हुआ वो, उसने तस्लीम नहीं किया इसको कि वो खुद जो है वो कुरान को सर्टेनिटी मान ले, वरना तो वो मोमिन बन जाएगा, वो मोमिन नहीं बना। लेकिन उसने इस बात को समझ लिया कि मोमिन की शान ये है कि वो कुरान को हतमी मानता है, सर्टेन मानता है, जिसमें कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं हो। तो दिस इज हाउ दैट नॉन मुस्लिम स्कॉलर डिफाइंस द बिलीवर मुस्लिम्स, बिलीवर मुस्लिम की ये शान है, ये तारीफ है। इवन उस काफिर को ये बात समझ में आ गई, और हम अपने आप को बिलीवर समझ रहे हैं, हम अपने आप को जो है वो क्या समझ रहे हैं, बड़ा इबादत गुजार, बड़ा जो है वो नेक परहेजगार, और सबसे ज्यादा अल्लाह का वली और सब कुछ, लेकिन कुरान के ऊपर हतमी यकीन कोई नहीं। भाई हम ऐसी हरकतें करते हैं, ऐसी बातें करते हैं जो कि बिल्कुल कुरान की नफी कर देते हैं। वैसे दावे बड़े करते हैं कि हमें कुरान के ऊपर यकीन है, एक हमारी हरकत के ऊपर कोई आगे से हमें कुरान की आयत पेश करे ना, हमारे दावे की मट्टी पलीद हो जाएगी, एक तो बिल्कुल जो है ना वो जमीन पे आकर के यानी गिर पड़ेगा हमारा दावा। क्योंकि कुरान पे यकीन का मतलब ये नहीं है कि वहां जी कुरान अल्लाह की किताब है मैं इस बात पे यकीन रखता हूं, नहीं, कुरान पे यकीन इजमाली नहीं है एक्सेप्टेबल। कुरान पे यकीन का मतलब इजमाली यकीन नहीं है, इजमाली यकीन तो तौरात के ऊपर कि हाँ वो अल्लाह की किताब थी, इंजील के ऊपर कि हाँ वो अल्लाह की किताब थी, मैं मानता हूं कि वो अल्लाह की किताब थी। कुरान के ऊपर यकीन का मतलब है तफसीली, यानी एक-एक आयत के ऊपर यकीन। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक एक आयत पढ़ते जाएं और उसके जो है वो हाँ 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 करते जाएं, बल्कि इसका मतलब ये है कि जब आपके सामने कोई कुरान की आयत लाई जाए आप उसका इनकार नहीं कर सकते, उसके अंदर जो बात समझाई जा रही है जो कि तवातुर के साथ अगर उसके मफहूम क्लियर है आप उसका इनकार नहीं कर सकते। ठीक है, आपने इनकार कर दिया, इसका मतलब ये कि आप कुरान के ऊपर यकीन नहीं। तो काफिर की बताई हुई मिसाल क्या थी कि काफिर इस बात को समझ गया कि एक मोमिन तो यही होता है, मुस्लिम तो यही होता है जो कुरान को सर्टेन समझता है। ठीक है, और मोमिन की बात जो हमने पढ़ी बहुत ही रिसेंटली, बल्कि आज सुबह ही को, वो क्या कि हजरत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी दामत बरकात है, जो अल्लाह ताला उनकी जिंदगी में बरकतें अता फरमाए, जो हमें अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मौजूद हैं, उन्होंने एक मकाला लिखा था 1964 में, एक्चुअली पढ़ा था उन्होंने, फिर उसके बाद जो है वो प्रिंट होकर के छपा भी। ठीक है, इतना जबरदस्त वो मकाला है कि हम उसकी जबरदस्ती जो है ना उसको उसका इदराक करना बड़ा मुश्किल काम है हम जैसों के लिए। उन्होंने एक बड़ी जबरदस्त बात लिखी, वो पूरा यानी कुफर और इस्लाम का जो है ना जो तकाबुल शुरू से लेकर के अब तक चल रहा है उसके बारे में दरअसल वो उनका एसे था, वो मकाला था। तो उसमें उन्होंने बात ये लिखी कि मुसलमानों का जो गैर मुस्लिम तहजीब के साथ टकराव हुआ है ना, तो वो तारीख में कई मुकाम पर हुआ है, कई मौकों पर हुआ है। ठीक है, सबसे पहले उसका टकराव कब हुआ गैर मुस्लिम तहजीब के साथ, जो बड़ी बड़ी तहजीबें थी, जब मुसलमानों ने रोमियों को फतह किया। ठीक है ना, एक तरफ रोमियों को और दूसरी तरफ जो है वो ये फारिस को। ये जो अब आप कहें कि भाई मुसलमानों ने पहले तो जजीरतुल अरब को फतह किया, तो सबसे पहला टकराव तो जो है वो अरबों के साथ हुआ होगा। तो अरबों के साथ जो टकराव हुआ ना नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा का अरबों के साथ, ठीक है ना, अरबों के पास कोई तहजीब ही नहीं थी, ये तो लिजर्ड ईटर्स थे, है ना, ये तो छिपकलियां खाने वाले लोग थे, इनके पास तो कोई तहजीब व तमद्दुन था ही नहीं। तहजीब व तमद्दुन उस जमाने में किसके पास था, अहले फारिस के पास था और अहले रोम के पास था। तो जब मुसलमानों ने सबसे पहले फारिस और रोम को फतह किया ना, ये उनका पहला यानी तसादुम था तहजीबों के साथ, दूसरी तहजीबों के साथ। लेकिन वो तसादुम जो है उसमें दूसरी तहजीबें जो थी ना वो मुसलमानों के सोच और फिक्र के ऊपर गालिब नहीं आ सकी। रोम में गए तो हो सकता वो रोमियो जैसे बन जाते, जैसे कि वो एक है भी है। ये लोग एक अंग्रेजी का बाकायदा गाना है, वेन इन रोम डू एज द रोमन्स डू, जब आप रोम में पहुंच गए तो अब आप रोमियो की तरह हरकतें करना शुरू हो जाए। जैसे हम जो है ना वो सऊदी अरब में तो बड़ा नाउज बिल्ला अल्लाह ताला माफ माफ करे बुरके में होती हैं औरतें, ठीक है ना, जब अमेरिका के एयरपोर्ट पे उतरती हैं ना तो बुरका सारा उतर जाता है, अमेरिका के एयरपोर्ट के ऊपर बुरका उतर गया। ठीक है ना, तो बुरके वाली किधर गई, ओ जी उनका बुरका तो वेन इन रोम डू एज द रोमन्स डू। तो क्या सहाबा कराम भी ऐसे ही करते कि रोम फतह कर लिया अब रोमियो जैसे बन जाओ, फारिस फतह कर लिया फारिस जैसे बन जाओ? नहीं, उनका इतना पक्का यकीन था, इतना पक्का इत्मीनान था अपने नबी अलैहिस्सलाम के तरीके के ऊपर कि वो उन तहजीबों में जाने के बावजूद उनके जैसे नहीं बन गए, बल्कि उन तहजीबों को अपने जैसे बना लिया। राइट, उन तहजीबों को अपना जैसा बना लिया। उसकी वजह क्या थी कि उनके नजदीक इस्लाम की जो तहजीब थी, इस्लाम का जो फलसफा था, वही सही फलसफा था और बाकी सारे फलसफे गलत थे, सारे फलसफे गलत थे। इसको कहते हैं यकीन, कुरान पर यकीन, नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर यकीन। लेकिन इस दौर के अंदर फिर टकराव हुआ वेस्टर्न सिविलाइजेशन के साथ मुसलमानों का। लेकिन लेकिन अब क्या हुआ, वेस्टर्न सिविलाइजेशन पूरी तरह से गालिब आ गई हमारे ऊपर। क्यों गालिब आ गई? अब क्या अब हम मुसलमान नहीं है? अभी भी हम मुसलमान, राइट, यानी 200 साल पहले जब ब्रिटिश ने जो है वो इंडिया पे कब्जा किया और फ्रेंच ने जो है वो अफ्रीका के ममालिक पे कब्जा किया और जो है वो डच ने जो है वो साउथ ईस्ट एशिया के उन मुसलमान ममालिक पे कब्जा किया, तो भाई वो उस वक्त वो लोग भी तो मुसलमान ही थे ना। अब क्या हो गया, अब उनकी सिविलाइजेशन कैसे गालिब आ गई? वजह यही थी कि अब जो है ना वो हमारा यकीन मुतजलजल हो चुका था, हमारा ईमान जो है वो कमजोर पड़ चुका था। अब हम कुरान और सुन्नत को 100% हतमी नहीं मान रहे थे। नतीजा क्या हुआ, हम उन्हीं के रंग में रंग गए, रोम जाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, रोमी इधर आए और हमें अपना जैसा बना लिया। वजह यकीन की कमी थी। ठीक है, अल्लाह ताला बात की समझ अमल की तौफीक अता फरमाए। वा आखिर दुआ अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।